Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jaya Radha Vrindam Vyari Radha Vrindam Vyari Radhe. Jaya Shri Gaurang, Shri Gaurang, Jaya Shri Gaurang. Jaya Radha Madan Mohan Lalita Devi, Radha Madan Mohan Lalita Devi, Jaya. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai. Harinam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narom Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashta Prayashu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttamashloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Srimad Bhagavatam स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 15 यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनः च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिर जंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवहा यतैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रवशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिर जंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाहः यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिर जंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाहः यतेव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रवशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिर जंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाहः यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रवशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिर जंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाह यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रवशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिर जंगमानि यथा हरावेव गुण प्रवाह माताजी यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रवशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिर जंगमानि यथा हरावेव गुण प्रवाह यथा जिस तरह एव निश्चय ही सूर्यात् सूर्य से प्रभवन्ति उत्पन्न होता है वारह जल पुनः फिर से च तथा तस्मिन् उसमें प्रविशन्ति प्रवेश कर जाता है काले कालक्रम से भूतानि समस्त जीव भूमौ पृथ्वी पर स्थिर अचर जंगमानी तथा चर तथा उसी प्रकार हरौ भगवान में एव निश्चय ही गुण प्रवाह भौतिक प्रकृति का उद्भव भाषांतर तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और काल क्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होते हैं और काल क्रम में से पुनः उनमें लीन हो जाते हैं। तात्पर्य अल्प ज्ञान के कारण निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि किस प्रकार कोई वस्तु भगवान से निकलकर फिर उन्हें में लीन हो जाते। ब्रह्मचर्य संहिता में पुष्टि के कि यस्य प्रभा प्रभोतो जगदंड कोटि कोटिश वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलंक मनंत मशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती है और उन्हें किरणों में जो ब्रह्म तेज है सारी वस्तु विद्यमान रहते। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में 9.4 में हुई कि मत्सानि सर्वभूतानि। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। संपूर्ण दृश्य जगत श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त कोई और कुछ नहीं। इस श्लोक में दिए गए दोनों उदाहरण अत्यंत ज्वलंत है। वर्षा ऋतु में वर्षा पृथ्वी पर वनस्पति को पुनर्जीवित करके पशुओं तथा मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करने में सहायक बनती है। जब वर्षा नहीं होती तो अन्न का अभाव हो जाता है और मनुष्य तथा पशु मरने लगते हैं। समस्त वनस्पतियों तथा सारे चर प्राणी मूलतः पृथ्वी की उपज है। वे पृथ्वी से ही प्रकट होकर उसी में पुनः मिल जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण शक्ति कृष्ण के शरीर से प्रकट होती है और उस समय सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगता है। जब वे अपनी शक्ति को समेट लेते हैं तो प्रत्येक वस्तु लुप्त हो जाती है। ब्रह्मस्थिता में की 5.48 में इस भिन्न प्रकार से कहा है कि यस्य के निष्वसित कला व यथावलंब्य श्री राधावृंदम गौरांग महाप्रभु की जय। यस्य के निष्वसित कला वथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर महान सही यस्य कला विलिशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। सारी भौतिक सृष्टि भगवान के शरीर से उद्युत होती है और प्रलय के समय वह पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाते। यह सृष्टि यथा तथा प्रलय की प्रक्रिया महाविष्णु से श्वास लेने से संभव होते जो श्री कृष्ण के एक अंश मात्र है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं एनं भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम। तो आज यहाँ जो है प्रचेताओं का नारद का उपदेश यहाँ जो बताया कि प्रचेता भगवान के आज्ञा से इस भौतिक कार्यकलाप में जो कार्य करते इधर और गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते और जो स्वर्ग के सारा जो ऐश्वर्य उसका उपभोग करते अंत में वो क्या करते नारद मुनि के उपदेश से यहाँ कैसे भगवान के उपदेश का वो स्वीकार कर रहे। यही ये प्रार्थना इसमें बताया गया कि कैसे पहले से इधर आप पहले भी क्या है कि सारा जो सृष्टि है वर्षा के काल में सूर्य से उत्पन्न होते जैसे हम देखते हैं, जैसे बारिश गिरता है तो ही सारी सृष्टि, पेड़ पौधे उगने लगते हैं। जब बारिश नहीं होगा तो यहाँ कुछ कुछ नहीं हो सकता है। पानी के बिना कुछ हो सकता है क्या? नहीं। उसी तरह से जैसे वर्षा काल में सब कुछ पेड़ पौधे बीजारोपण करते हैं, सब हो जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं, बाद में उसको फूल आता है, फल आता है, और दूसरी बाद में उसके छेष तंत्र से वो ऐसा क्या होता है, लुप्त हो जाता है। अंत में वो क्या होता है, ये सृष्टि में पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं, ऐसे यहाँ कहा है। तो इसका उदाहरण कि उसी तरह से सारा सृष्टि जो है सारे भगवान से आते हैं, ये भगवान से ही सब बन जाता है। और सारा सृष्टि जो बन रहा है कहाँ से आते, भगवान से आते हैं। या देखते ब्रह्मा शिव जी या जो विष्णु के द्वारा की, या जो भक्तिविनोद ठाकुर या एक भजन लिखते हैं, उसमें लिखे हैं कि तुम्हें सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छा विश्वे सृजन सहार, तव इच्छा मृत ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मते शिव करे न सहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार, तव इच्छा मते जीवेर मरण समृद्धि निपात दुख दुख संकटन, मिछे माया बद्ध जीव आशा पाश फिरे, तव इच्छा बिना कुछ करित न पार, तुम्ही रक्षक आर पालक अमार तुम्हार चरण बिना आशा नाही आर, निज बल चेष्टा पति भरसा चालिया तुम्हार इच्छाय आची निर्भर करिया, भक्ति विनोद अति दीन अकिंचन तुम्हार इच्छार तार जीवन मरण। तो भक्तिविनोद ठाकुर में हम यहाँ इसका वर्णन किया कि देखो कैसे, हे व्रजेंद्र कुमार कृष्ण आप सभी के ईश्वरों के ईश्वर है, आपकी इच्छा मात्रे से ही ये ब्रह्मांड का सृजन एवं संहार होता है। तो भगवान की इच्छा है उसी तरह से सारे सृजन सार, ये ब्रह्मा जी है ये सार से सृष्टि बनाता है, किसकी? भगवान के इच्छा के अनुरूपी बनाता है, ये बताएगी। तो उसी तरह से यहाँ बताया कि आपकी इच्छा मात्र से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और आपकी इच्छा मात्र से भगवान विष्णु पालन करते हैं। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी ये सृष्टि निर्माण करता है ब्रह्मा जी करते हैं, सर्व पालन पोषण भगवान विष्णु करते हैं और सार भगवान शिव जी करते हैं। तो ये किसे? कृष्ण के इच्छा के मात्र से सब हो रहा है। और आपकी इच्छा से ही जो जीवात्मा है वो जन्म और मरण इसका अनुभूति कर रहे हैं। हमारा जन्म होता है हमारा और बाद में हमारी मृत्यु होते हैं। वास्तविक जीव का कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता है, कभी मृत्यु होता नहीं, लेकिन कहाँ से ये सृष्टि से हमें हमें लगता है कि हमारा भी हमारा मृत्यु हो गया सब, इसीलिए हम डर जाते हैं, मृत्यु आते हैं हम सब लोग डर जाते हैं। तो उसका ये भी कैसे उनकी इच्छा से जीवात्मा ये जन्म मृत्यु का मरण का अनुभव करता है और आपकी इच्छा से ही समृद्धि विनाश सुख अथवा दुख से गुजरते, उसकी सुख दुख की विनाश सुख ये सब कहाँ से? उनकी इच्छा से, भगवान की इच्छा से हम सब अनुभूति करते हैं। क्षुद्र जीव अकारणी सांसारिक आशाओं में बंध कर संघर्ष करता है। तो हमारा सब जो है आशा सबसे हम जो बंधे हैं सारे अच्छा इच्छा के अनुरूप या हम बंधे गए, ये ऐसे आपकी इच्छा के बिना वह कुछ नहीं कर पाता है। ये कृष्ण के कृपा, ये कृष्ण के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगता है सब हम भी कर देते हैं। आपके एकमात्र से पालनहार और संरक्षक हैं और आपके चरण कमलों के अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई आशा ही नहीं, और अपने निज बल और प्रयासों पर भरोसा छोड़कर मैं अपूर्णता आपकी इच्छा पर निर्भर करता हूं। तो भक्ति विनोद अत्यंत दीन है और उसका घमंड चूर चूर हो गया है, उसका जन्म और मरण आपकी इच्छानुरूपी अनुसार ही है। तो भक्तिविनोद ठाकुर हमारे महान आचार्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर, कल उनका उनके आविर्भाव था उनका, तो उनके भक्तिविनोद ठाकुर उनके पिताजी, उन्होंने क्या है, ये सारे हमारा बहुत ही ग्रस्त जीवन का उसके वर्णन करते कि जो क्यों होता है भगवान से सब होता है। तो कुछ भी हम करेंगे हमें सबको क्या लगता है, ये सब मैं करता हूँ। सृष्टि का निर्माता तो जैसे देखते कि भगवान श्री कृष्ण, अभी हम कुछ टूर देते हैं कि तो कभी कभी कहते कि सारा विष्णु से आते हैं, कृष्ण भी विष्णु से आ गए। तो परिक्रमा में बहुत लोग सवाल पूछते कि सारा सृष्टि का ऐसा है, तो बोलते विष्णु से आते हैं, कृष्ण भी विष्णु से आ गए। तो उनको जब बताया कि भगवान के उसमें से हम कोई ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन सृष्टि का अपने मर्जी से नहीं लगा सकते, जो शास्त्र में बताए गीता और भागवत वहाँ से हम सुनना चाहिए। तो सृष्टि से किसे, भगवान श्री कृष्ण से, मूल कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वामी प्रभुपाद ने जो लिखा है भागवतम में और व्यास महर्षि ने दिया है, वो शास्त्र को हम देखना चाहिए। तो सृष्टि से वैदिक भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और भगवान से स्वांश बलराम जाते, वहाँ से उनसे संकर्षण आते, और संकर्षण से जो भगवान के विष्णु के स्वरूप थे प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव और ये चार चतुर्भुज आ जाते, और वहाँ से कारणोदशाई, पहले जो भगवान से चार पांच मुख्य अवतार रहते हैं, एक है पुरुषा अवतार है, गुना अवतार है, और शक्तावेश अवतार है, लीला अवतार है, युगा अवतार है। तो यहाँ से सृष्टि का एक एक एक, एक स्तर आ जाते हैं। तो पहले से तो पुरुषा अवतार से भगवान पहले कारणोदशाई विष्णु जो कारण शायद में लेटेर, वहाँ से उनके रोम रोम से हजारों ब्रह्मांड, एक रोम से ब्रह्मांड हो जाते। तो सृष्टि के पुराण निर्माण पुराण कैसे आते हैं, सारे ब्रह्मांडों बन जाते एक एक रोम से भगवान विष्णु जो है कारणोदक्ष विष्णु उनसे। और इस विष्णु, ये जो पहला है पुरुषावतार कारणोदक्ष विष्णु, दूसरा पुरुषावतार है कि हर एक ब्रह्मांड में पूरा आधा जलाशय में भर जाता है, उसके अनंत शेष, अनंत शेष के ऊपर गर्भोदकशायी विष्णु प्रविष्ट हो जाते हैं। तो दूसरे हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु प्रविष्ट है, तो दूसरा, ये भी दूसरा पुरुषावतार है, वो है गर्भोदकशायी विष्णु। और तीसरा पुरुषावतार है क्षुरोदकशायी विष्णु, ये जो है ये क्या करते हैं, हर एक कण में और हर एक के शरीर में परमात्मा के रूप में कण कण में विराजमान होते हैं, वो है क्षुरोदकशायी विष्णु। तो सब जगह पे कौन है, भगवान विष्णु के पुरुषावतार कार्य करते हैं, और वही नाभि से गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से जो कमल आता है, और कमल के ऊपर हर एक ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु है, हर एक ब्रह्मांड में नाभि से विष्णु के कमल आते हैं और उसके ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो सृष्टि में तो ब्रह्मा जी सारा सृष्टि का निर्माण करता है, और भगवान विष्णु ही वापस के पालन पोषण, जो पालन का कार्य करते हैं, और भगवान शिव अंत में उसका संहार कर देते हैं, और अपने इच्छा से हम कुछ नहीं करते। और कभी कभी ब्रह्मा जी वो जो पद रहते हैं उस पोस्ट के ऊपर, वो ब्रह्मा जी नहीं हो सकते क्या, इंद्र देवी देवता अलग अलग जो पोस्ट है, सूर्य देवता, इसमें वो संभालने के लिए नहीं रहेगा, वो पात्रता नहीं होगा। जैसे हमारे अभी कुछ सरकार में बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते, तो उस समय क्या होते हैं, सारा राज्यपाल या राष्ट्रपति के राजवटी चल रहे होते। उसी तरह से कोई इंद्र पद या ब्रह्म पद कोई उसके लायक नहीं होगा उसका, तो उस समय क्या कर देते, भगवान विष्णु स्वयं वो पद संभाल देते, सब कार्यभार वही करते, भगवान विष्णु ही सब कर देते सब कार्यभार। तो ये है भगवान का पुरुषावतार से भगवान अलग तरह से कार्य करते हैं। तो गुणावतार से भी वह आते कि ब्रह्मा विष्णु जी महेश वो निर्माण करना और उसका पालन करना और सार करना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुणावतार में आते हैं भगवान के। और जो लीला अवतार है, भगवान अलग अलग युग में उनकी लीला करते हैं, जो नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, ये जो है प्रभु रामचंद्र, ये सब भगवान के लीला होते, बलराम जी ये सब लीलावतार में आते और शक्त्यावेश अवतार, जो शक्त्यावेश अवतार है भगवान, कभी अभी जैसे हम देखते हैं कि पृथु महाराज उनको शक्ति प्रदान करते हैं और व्यास महर्षि उनको शक्ति देते हैं, भगवान परशुराम ये भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। तो शक्ति भगवान प्रदान करते हैं और शक्ति के द्वारा उनको ये सारे सृष्टि का कार्यभार संभालते ये करते हैं। और जो युगावतार है तो युगो युग में भगवान आते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक ही बार आते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने होते हैं? हजार चतुर्युग, हजार चतुर्युग एक दिन में हो जाते हैं, उतने उनके रात में 1000 चतुर्युग हो जाते हैं। तो हजार चतुर्युग में एक ही बार भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं द्वापर युग में, उसके आगे के स्वयं कलयुग में आते हैं वो है चैतन्य महाप्रभु। तो हजार युग में एक ही बार, हजार चतुर्युग में, तो चतुर्युग कितना है दें? सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग मिलकर एक चतुर्युग होता है। ऐसे हजार चतुर्युग में एक ही बार भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आते हैं, उसके आगे के युग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हर समय भगवान कृष्ण नेते, तो उस समय वो भगवान कृष्ण वो जब आते हैं तो स्वयं आ जाते हैं और स्वयं आकर कार्य करते हैं। तो उनका इसलिए भगवान हमें जो जो युगावतार है वो चैतन्य महाप्रभु है। और अभी 500 साल, 500 साल ही पहले चैतन्य महाप्रभु आकर गए और इसी कलयुग में हम सब लोग आ गए। हम सब बहुत भाग्यशाली वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हरे नाम से लेते, उसको कहते युगावतार। तो हर समय नहीं आते वो हजारों। तो ब्रह्मा जी का एक जो एक दिन में हमारे कितना वर्ष होता है, क्योंकि बताए कि 4 अब्ज 30 कोटि साल, 4 अब्ज 30 कोटि उनका एक दिन यहाँ के एक साल रहते हैं, यहाँ जो वर्ष रहते ना 4 अब्ज 30 कोटि, ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतना ही एक रात होता है उनके। तो ऐसे ब्रह्मा जी के 1 महीना 30 दिन, 1 महीना होते हैं उसके 12 साल होते हैं, 12 साल से उनके 100 100 साल उनका आयु रहता है। तो उनका कितना ब्रह्मा जी का आयु है। तो ऐसे दिन में वो सारा कार्य जो है देखते कि, तो हमें सबसे बताया कि हमें लगता है सब कुछ हम करता है, जो चला रहा है हम नहीं चल रहे हैं भगवान, ऐसे नहीं। भगवान तो कहते हैं सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति में यान्ति काम मामि काम कल्पक्षे पुनस्तान में कल्पादव्य सृजाम्यम। जो को भी चाहे, जो कल्प के जैसे हम जो सृष्टि के सारा जो कल्प क्या कल्पक्षय है, जब कल्पक्षय हो जाता है उसमें ब्रह्मा जी उनका ब्रह्मा जी का आयु खत्म होता है, उसके बाद में दूसरे ब्रह्मा जी आ जाते हैं। तो कल्पक्षय, तो इतना आयु देखो, इतना आयु ब्रह्मा जी या जीते हैं। तो उसमें से हर एक बार भगवान श्री कृष्ण नहीं आते, तो उनके विष्णु के अवतार भेज देते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु हजारों चतुर्युगपादी या आ जाते हैं सृष्टि के। और यहाँ कि प्रकृतिम स्वामो अष्टपे विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृतस्न अवश्यम प्रकृति वर्षात, कि मैं यह बारंबार सृष्टि का उनकी प्रकट करता हूँ, बारंबार उनको अप्रकट करता हूँ, उनको नाश करता हूँ, निर्माण करते हैं। ये भगवान कृष्ण से सब भगवान करते हैं। तेरह माया अध्यक्षणे प्रकृति स्वेते सचराचरम, और सारी ये माया शक्ति वो भी मेरे अध्यक्ष के नीचे सारे कार्य कलाप कर देते हैं। तो हमें कुछ ऐसा कर नहीं सकते, हम कुछ भगवान की इच्छा के निरूपी चल रहा है ये हम समझना चाहिए। हमारे जो शरीर है या के हम कुछ करता है तो हमारे इच्छा अनुकूल नहीं होते। तो महाराष्ट्र के संत श्री तुकाराम महाराज भी कहते हैं एक अभंग में, चाले शरीर कोणाचे सत्य कोण बोलविते हरिविनम, देखावी ऐकावी एक नारायण त्याच भजन चुकू नको. वृक्षाचे पाणी हाली ज्याची सत्ता राहिली अहंता मग कोणे. हे आम्हाला शरीर आहे, हे शरीर भी कोण चला रहा है? हम नहीं चला, हमारे मर्जी से हम नहीं चल सकते. हमारे हमेशा जो हमें आँख दिया है, लेकिन दृष्टि किसने दिया है? हमें कान दिया है, कुछ आवाज़ नहीं आएगा तो क्या होगा? अभी हमारे से कुछ हम कभी कभी हम बात करते बोल रहे हैं, ये हमारे से आवाज़ है, या अंदर से आवाज़ गया तो कैसा हो सकता है? तो कौन कर रहा है सब देखना चाहिए. जैसे कोई बांसुरी है, बांसुरी कोई कोई उसको फुंकर नहीं मारेगा तो बांसुरी बजने वाले नहीं है. उसी तरह से ये जो हम जो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं. जो जो वृक्ष का जो एक पत्ता है वो भी भगवान के मर्जी के बिना नहीं हिल सकता है. सब कुछ क्या है, कृष्ण की इच्छा के अनुरूप कार्यरत हो रहा है. हमारी इच्छा के अनुरूप कोई नहीं होता है. तो हमारा अहंकार है, हम अहंकार को सबसे इम्पोर्टेंट है. हम जो भी कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ करता है, जो कुछ अच्छा करता है, जो कुछ हम कार्य करते हैं बड़े बड़े, तो उसके लगता है ये सब मैं ये कर रहा हूँ. तो उसको हमें भक्त के लिए वही बता रहे कि हम कुछ नहीं कर रहे, श्राश्रय हम किसको देना चाहिए? हमारे गुरु महाराज को, अरे सारे आचार्य को और भगवान श्री कृष्ण को ही हम देना चाहिए. हमारे की इच्छा अनुरूप कुछ नहीं हम कर सकते. सारा सृष्टि जो है हम भगवान से आते हैं और सब कुछ भगवान ही कहते हैं. लेकिन जो अल्पज्ञानी लोग हैं वो हमेशा समझ नहीं पाते कि ये सारा भगवान से आ रहा है. ये हमें उनको समझ में नहीं आता है. तो वही हम समझना चाहिए और कृष्ण को शरण लेना चाहिए. तो इसे देखते जैसे कि भक्त के जीवन में या कुछ देवी देवता हो, इंद्र हो या ब्रह्मा जी हो, उनको भी कभी कभी अपने पद का भ्रमित हो जाते हैं कि वह घमंड हो जाता है. तो उसमें भगवान बारंबार उनके लीला द्वारा उनको दिखा रहे कि आप कुछ नहीं. तो जैसे ब्रह्मा जी में हम देखते कि ब्रह्मा जी भी कृष्ण लीला में एक बार भ्रमित हो गए थे, उनको समझ भी नहीं आता है. जैसे कि अघासुर को मारने के बाद ब्रह्मा जी को क्या लगता है कि अघासुर को किसने मार दिया, ब्रह्मा जी आकर यहाँ देखते. तरे कृष्ण एक छोटा सा बालक है, ये कैसे मार सकते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी को लगता है. और मैं तो सृष्टि का निर्माता हो, तो सृष्टि का निर्माता होने के कारण ये अघासुर को मारने वाला कोई जीवात्मा इस सृष्टि में मैंने तो पैदा नहीं किया है, ऐसा ब्रह्मा जी लगता है. और आके देखता है तो कृष्ण एक छोटा सा बालक है, इसको मारने वाला भगवान ही मार सकते, लेकिन कौन है? ये तो एक बालक है और अपने मित्र के साथ उनसे झूठा भी खा रहे हैं. कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ उनके कैसे करें, उनसे मुंह से भी खा रहे हैं. तो भगवान तो उस समय थे, भगवान की लीला चल रही थी कि मधुमंगेर के मुंह में बहुत अच्छा छास रहता बहुत मुंह में, तो भगवान उसको मुंह को ऐसे करके उनके मुंह से अपने मुंह के अंदर लेते हैं. तो ब्रह्मा जी लगता है कैसे भगवान उसे देख, भगवान नहीं हो सकते क्योंकि उनसे झूठा खा रहे हैं. तो ब्रह्मा जी भी ऐसे भ्रमित हो जाते हैं. तो उनको लगता है कोई तो शक्तिशाली होगा तो हम उसकी परीक्षा करना चाहिए. तो ब्रह्मा जी क्या क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का जो ग्वाल बाल जो सखा है और उनके जो गैया के बछड़े, उन सभी को ब्रह्मलोक में छिपाते हैं. अब ब्रह्मलोक में छिपा करने के बाद वो स्वयं फिर से आकर देखते कृष्ण भी क्या करेंगे, उनको जाके देखेंगे. तो जैसे यहाँ आते वो तो ग्वाल बाल वैसे के वैसे दिखते हैं, गैया के बछड़े वैसे के वैसे दिखते हैं. तो ब्रह्मा जी समझ जाते हैं, अरे मैंने कोई तो भूल किया है, कुछ तो मेरे से मिस्टेक हो गया है. और जैसे उनको भूल का एहसास होते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, जैसे एहसास होते भगवान उनको तुरंत क्या करते हैं, दर्शन देते हैं. सारे ग्वाल बाल सारे गैया के बछड़े चतुर्भुज के रूप में प्रकट है, चार चार भुजा जो विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हो जाते हैं. तो ब्रह्मा जी डर जाते हैं, अरे मैंने तो मेरे स्वामी का, मेरे स्वयं भगवान का मैंने अपराध किया है. तो ब्रह्मा जी क्या होते हैं, तुरंत शरण जाते, दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो ब्रह्म संहिता है यहाँ भी तात्पर्य में प्रभुपाद ने दो श्लोक का यह वर्णन किया है ब्रह्म संहिता में। तो ब्रह्म संहिता जो है वो वही बता रहा है, सारा जो है भगवान कृष्ण से आता है, कृष्ण से मिलन जाता है। तो ईश्वर को नहीं, कृष्ण है, और ये सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद, वो शाश्वत है, परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण आनंद उनके पास है। तो यही बता रहे कि ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं और उनको समझ में आते हैं कि हमारे कुछ नहीं, सारा कार्य कौन कर रहा है। और तो ब्रह्मा जी, भगवान तो परम दयालु है, उनको क्षमा करते हैं, ब्रह्मा जी कृष्ण का अभिषेक करते हैं और उनको ग्वाल बाल गया की पछड़ी देकर वापस चले जाते हैं। तो ये जो है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी भ्रमित होते। उसी तरह से हम देखते कि कभी कभी कुछ कार्यकलाप में जो पद का अहंकार होते, तो इंद्र को कुछ करते बारंबार अहंकार हो जाता है। तो वही सारे व्रजवासी भी देख रहे कि पूजा करते हैं हर समय, जो जो खेती करते हैं, या तो हम सबको वैश्य लोग रहते हैं, उनको हमेशा बारिश करने के लिए बोलते हैं हम क्या करना चाहिए, इंद्रदेव की पूजा करनी। बारिश कौन देते हैं, इंद्रदेव देता है, तो उसकी पूजा करना चाहिए। लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सब कर रहे हैं तो उनको थोड़ा अहंकार हो गया है, अहंकार वजह से भगवान देख रहे हैं। तो हमारे भक्ति के जीवन में भी अहंकार हो जाते क्या होते हैं, भगवान अपना क्या करते हैं, वो अहंकार कम कर देते हैं। तो इंद्र का भी अहंकार ऐसे भगवान कृष्ण ने क्या किया, गिरिराज महाराज का, गोवर्धन का पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद इंद्र को लगता है कि ये जो कि मैं भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा कर, इंद्र को लगता है मेरी पूजा की नहीं, ये कृष्ण की बात सुनकर वो तेजी से बारिश गिराता है। लेकिन कृष्ण, सारे व्रजवासी कृष्ण के शरण में जाते हैं और कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं की उंगली पर धारण करके सबकी रक्षा करते हैं। तो इंद्र, भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं कि इंद्र जो है कि, और जो मेरे शरण में आता है उनको, चाहे देवताओं के राजा क्यों ना हो, कोई असुर क्यों ना हो, उसको कोई ये नहीं कर सकता है, उसका बाल बाका नहीं, परिपूर्ण भगवान रक्षा का आश्वासन दे। दूसरी तरह से या इंद्र को कृष्ण क्या करते हैं, शिक्षा देते, देखो आप कुछ नहीं कर सकते। इंद्र पूरे व्रज का प्रहार करते और तेज से जो प्रलय के समय जो संवर्त नाम के जो बादल है उनको बुलाकर वृंदावन का नष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो भी उनकी शक्ति से कुछ नहीं होता है। तो उसको भी उनको, तो इन सारे असुर को हम कृष्ण शिक्षा के मारते हैं, लेकिन जो भक्त रहते हैं वैष्णव होते भगवान को शिक्षा, जो अहंकार है उसको ही मार देते हैं। तो हम भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ कार्य के लगता है कि हम ये खुद कर रहे हैं, तो अंत में समझ में आता है अपनी कुछ औकात नहीं और वो समझना चाहिए। तो ऐसे भी हम जो कि श्रेय है किसको देना चाहिए, गुरु को और अपने भगवान को सब श्रेय देना चाहिए, ये हम सीखना चाहिए। और सारा जो आता है भगवान से ही आता है, यही सब बताया है। और यहाँ से हम देखते कि अपने आचार्य से भी कि प्रपाद जो पूरा कि प्रपाद जो पूरा इतने ग्रंथ लिखे, तो प्रपाद के कुछ भक्त प्रपाद स्वयं ग्रंथ पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय उनके भक्त कभी आपने प्रपाद सभी ग्रंथ लिखा है लेकिन आप क्यों पढ़ रहे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सब ग्रंथ किसने, आप ही नहीं लिखा ना, तो प्रबल नहीं मैंने नहीं लिखा है, ये सब किसने लिखा है, भगवान ने लिखा है, इसलिए ये मैं ये सब ग्रंथ पढ़ता हूँ, कृष्ण ने लिखा है ऐसे। तो ये आचार्य से हम समझना चाहिए कि हम कैसे। और हम दूसरा उदाहरण देते कि मैं लास्ट में कि बलदेव विद्याभूषण कि जयपुर में उस समय क्या होता है, रामानुज साम्प्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय, तो उनको गौड़ीय संप्रदाय को किसी तरह से उनको पूजा करने का अधिकार नहीं, ऐसे वाद वाद चल रहा था। तो वहाँ से रामानुज संप्रदाय थोड़ा ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया था। तो और वो जो जयपुर के उस समय सवाई जयसिंह थे, वो क्या करते वृंदावन में विश्वनाथ चक्र ठाकुर उनको मैसेज भेजते कि आप आएंगे इधर तो ये सब वाद है, गौड़ी वैष्णव है, उनको ये अधिकार मिल सकता है पूजा करने का। तो उस समय उनके तो बहुत आयु होती है, वो नहीं चल पाई थी वृद्धापकाल में, तो वो अपने शिष्य को जो बलदेव विद्याभूषण उनको भेजते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण और रामानुज सम्राट का वाद विवाद हो जाते हैं। तो उसमें से काफ़ी सवाल एक एक दूसरे को होते हैं कि आप राधा रानी को या कैसे रख नहीं सकते, और आपके पास कुछ ऐसे टीकात्मक ग्रंथ नहीं है। तो वो बलदेव विद्याभूषण उनको सही तरह से बताते कि राधा रानी तो भगवान को जब स्वकीय रस का आस्वादन करने उस समय वो रुक्मिणी द्वारका सीता लक्ष्मण इसमें रहते, और परकीय रस का आस्वादन करना है तो वृंदावन के भाव में उस राधा रानी को परकीय रस आस्वादन में रखते थे। और उनको अंत में सब उनको बताते कि आप परंपरा से नहीं है, तो पहले से बताते कि मैं रामान इससे मध्वाचार्य संप्रदाय से दीक्षा ली थी बलदेव विद्याभूषण ने, और मेरे शिक्षा गुरु है जय गौड़ीय वैष्णव से, तो वो भी दोनों कनेक्ट के होते हैं। और अंत में उसको लास्ट में बताते कि आपके पास कोई आपका वेदांत के ऊपर कोई टिका नहीं, वो आप तो इसलिए आपको मान्यता नहीं दे सकते। तो बलदेव विद्याभूषण कुछ समय उनको बोलते कि हमें कुछ समय दीजिए, हम आपको ये प्रस्तुत करेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण गोविंद देव से प्रार्थना करते कि भगवान आप ही आप हमारे सब गौड़ीय वैष्णव का जो है सावरा आपके हाथ में आपकी कृपा से आप होना चाहिए। तो गोविंद बलदेव विद्याभूषण सारा जो वेदांत सूत्र प्रबोध कुछ ही दिन में क्या करते टीका लिखते, तो वो सारा श्रेय किसको देते गोविंद भाष्य। तो बलदेव विद्याभूषण खुद को ये श्रेय नहीं देते, तो किसने लिया गोविंद भाष्य उनको सादर करते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए और सब कुछ भगवान से आता है ये समझना चाहिए, और भगवान में विलीन हो जाते हैं ये समझना चाहिए। कृंतरा श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण।
दूसरे द्वापर युग में कौन आता है?
कौन से
द्वापर युग में? दूसरे जैसे हजार युग में एक बार ही आते हैं आपने बोला, एक द्वापर युग में आते हैं, तो दूसरे द्वापर युग में कौन आता है?
तो वो जो है वो महाविष्णु से कुछ अवतार, महाविष्णु से, तो महाविष्णु के अवतार जो कार्यकलाप में आ जाते हैं। जैसे हम देखेंगे अभी यहाँ भी पंचतत्व से जो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगवंत वृंद, तो चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण है, और नित्यानंद प्रभु ब्रजरानंदन बलराम जी नित्यानंद है, और जो अद्वैत आचार्य है वो कने महाविष्णु और भगवान शिव जी का स्वरूप है, और गदाधर पंडित ये श्रीमती राधारानी और श्रीवास ठाकुर श्री नारद मुनि। तो महाविष्णु से अवतार आ जाते हैं ऐसे बताए शास्त्र में वर्णन है। तो कभी कभी आप ऐसे भी सोचते कि कुछ द्वापर युग में कि आपको अलग अलग इसमें देखेंगे कि कालिया का मर्दन करने के बाद वो कालिया के ऊपर ही भगवान कृष्ण तुरंत कालिया उसको लेके गए और कंस को मार दिए, कुछ उसमें अलग अलग युग में अलग मनवंतर में अलग अलग के अवतार होते हैं, तो वो ये भी आपको सुनने मिलते हैं। तो महाविष्णु से कुछ अवतार आ जाते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।